शून्यवादी ग्रामीण नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनेति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वैराग्य युग भक्ति रसं प्रयत्नैः अपायन मामनुभीप्सुमन्धम् कृपां बुधिर्यः पर दुख दुखी सनातनं तं प्रभुमाश्रयामि वंदे अनंताद्भुत ऐश्वर्यम् श्री चैतन्य महाप्रभुम् नीचो यपि जत प्रसादात् साद भक्ति शास्त्र प्रवर्तकः जत कीर्तनम् जत स्मरणम् जदीक्षणम् जद वंदनम् जत श्रवणम् जदर्हणम् लोकस्य सद्यो विधनोति कल्मषम् तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः भूतैर्महद्भियैमा पुरो विभु निर्माय शेते जदमोऽसुपुरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडशषोडशात्मकः सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे योऽन्तः प्रविशं मम वाचमिमां प्रसोक्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरा सधाम्नाम् अन्यांस्त्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय अन्तर्धान गतिं सक्रात् अन्तर्धान गतिं सक्रात् लब्ध्वा अन्तर्धान संगीतः लब्ध्वान्तर्धान संगीतः अपत्य त्रयम् आधत्त अपत्र त्रयमाधत्त शिखण्डिन्यां सुसम्मतम् शिखण्डिन्यां सुसम्मतम् अन्तर्धानगतिं सक्रात् लब्ध्वान्तर्धानसङ्गितः अपत्यत्रयमाधत्त शिखण्डिन्यां सुसम्मतम् अन्तर्धानगतिं सक्रात् लब्ध्वान्तर्धानसङ्गितः अपत्यत्रयमाधत्त शिखण्डिन्यां सुसम्मतम् अन्तर्धानगतिं सक्रात् लब्ध्वान्तर्धानसङ्गितः अपत्यत्रयमाधत्त शिखण्डिन्यां सुसम्मतम् हरे कृष्ण लब्ध्वान्तर्धान सङ्गितः पत्यत्रयमाधत्त शिखण्डिन्यां सुसम्मतम् अन्तर्धानगतिं सक्रात् पत्यत्रयमाधत्त गतिं सकृत्यात्रमाधत्त शिखण्डिन्यां सुसम्मतम् माताजी अन्तर्धानगतिं सकृत् अंतर्धान विलुप्त होने की गतिम शक्ति सक्रात इंद्र से लब्ध्वा पाकर अंतर्धान अंतर्धान संगीतः नाम पड़ा अपत्य संताने त्रयम तीन आधत्त उत्पन्न की शिखण्डिन्याम अपनी पत्नी शिखण्डिनी से सुसम्मतम सबों द्वारा अनुमत अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा पूर्व काल में महाराज विजितासु ने स्वर्ग के राजा इंद्र को प्रसन्न करके उनसे अंतर्धान की पदवी प्राप्त की थी। उनकी पत्नी का नाम शिखण्डिनी था, जिससे उन्हें तीन उत्तम पुत्र उत्पन्न हुए। तात्पर्य महाराज विजितासु अंतर्धान नाम से विख्यात थे, जिसका अर्थ होता है विलुप्त होना। यह पदवी उन्हें इंद्र से प्राप्त हुई थी। यह उस समय की बात है जब इंद्र ने महाराज पृथु के घोड़े को जगस्थल से चुरा लिया था।
जब वो घोड़ा चुरा रहा था तो वह औरों के लिए तो अदृश्य था, किंतु महाराज पृथु के पुत्र विजितास ने उसे देख लिया था। यह जानते हुए कि इंद्र उसके पिता का घोड़ा चुराए ले जा रहा है, विजितास ने उस पर आक्रमण नहीं किया। इससे सूचित होता है कि महाराज विजितास सही व्यक्तियों का सम्मान करते थे। यद्यपि इंद्र उसके पिता का घोड़ा चुराए ले जा रहा था, किंतु विजितास को ज्ञात था कि इंद्र कोई चोर नहीं है। क्योंकि इंद्र एक महान शक्तिशाली देवता था और श्री भगवान का सेवक था, अतः विजितास ने जानबूझकर उसे क्षमा कर दिया था। इससे इंद्र विजितास पर परम प्रसन्न हुए। देवताओं में इच्छानुसार प्रकट होने तथा छिपने की योग शक्ति पाई जाती है, और चूंकि इंद्र विजितास पर परम प्रसन्न था अतः उसने उसे योग शक्ति प्रदान की। इस प्रकार विजितास अंतर्धान कहलाए। यह है तात्पर्य। जय श्रील प्रभुपाद। इसके पूर्व आप महाराज पृथु के दिव्य चरित्र का श्रवण किए हैं, उसी क्रम में इस अध्याय को प्रारंभ किया जा रहा है। महाराज पृथु के पुत्र विजितास हैं, उनके विषय में बतलाया जा रहा है। सृष्टि परंपरा श्री भगवान से प्रारंभ होती है, तो विजितास का भी सीधा संबंध भगवान से है। उनके पुत्र ही महाराज पृथु हैं। इसके पहले महाराज परीक्षित के प्रश्नों का उत्तर देते हुए सुखदेव गोस्वामी स्वयंभू और मनु के वंश परंपरा को प्रस्तुत करते हैं। श्री भगवान से ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी मानव सृष्टि करने के उद्देश्य से स्वयंभू और मनु को उत्पन्न किए। स्वयं भगवान का नाम है। स्वयं से जो उत्पन्न होता है वह है स्वयंभू। स्वयं श्री भगवान और ब्रह्मा जी स्वयंभू, और स्वयंभू से उत्पन्न होने के कारण मनु महाराज को स्वयंभू मनु कहा गया। तो आगे भी कथा स्वयंभू मनु के विषय में आएगी। तो स्वयंभू मनु के 5 संतान थे, जिनमें 2 पुत्र और 3 पुत्रियां थे। प्रियव्रत, उतानपाद, आकुति, प्रसूति, देहूति। तो चौथे स्कंद में स्वयंभू मनु के पुत्र उतानपाद की कथा 8वें अध्याय से प्रारंभ करते हैं सुखदेव गोस्वामी। तो उतानपाद के पुत्र हुए ध्रुव। ध्रुव महाराज का दिव्य चरित्र आप सुने होंगे, जानते होंगे। तो ध्रुव महाराज के बड़े पुत्र थे उत्कल, जिन पर पिता का संस्कार पड़ा और वे राज्य स्वीकार नहीं किए, तो अपने छोटे भाई बत्सर को राज देकर भजन करने चले गए। तो बत्सर के अनेक पुत्रों में एक पुत्र थे पुष्पार्ण, और पुष्पार्ण के पुत्र हुए बिउष्ट, और बिउष्ट के कई पुत्रों में एक सुप्रसिद्ध पुत्र हुए चक्षु, जो मनु के पद को संभाले चाक्षुष मनवंतर में, और चक्षु के पुत्र हुए उल्मुख, उल्मुख के अंग सुप्रसिद्ध महाराज अंग, और अंग निसंतान थे। बहुत आग्रह, प्रार्थना, तपस्या के बाद उनको एक पुत्र प्राप्त हुआ, कुख्यात बेन, जिसकी कथा आप सुने होंगे। तो बेन के उत्पात से महाराज अंग घर में नहीं रह पाए, असमय में ही घर छोड़कर चले गए। तो अराजकता फैल गई और ऋषियों ने बेन के शरीर को, बेन के उत्पात से दुखी होकर उसे नष्ट होने का श्राप दिया, और बाद में जब अराजकता फैल गई तो बहुत विचार करके बेन के शरीर का मंथन किया गया, जिससे महाराज पृथ्वी उत्पन्न हुए। संक्षिप्त कथा है, यह हमारा विषय नहीं है, केवल मैं लिंक बता रहा हूँ। तो महाराज पृथ्वी भगवान के अंशावतार थे। दुखी पृथ्वी को सुख प्रदान करने के लिए महाराज राजपुत्र के रूप में आए और बहुत सुंदर शासन किए, पृथ्वी को सुव्यवस्थित किए, अनेक गांव और नगरों में विभाजन किए, खेती लायक समतल भूमि किए और प्रत्येक जीवों के जीने की व्यवस्था किए। तो पृथ्वी महाराज का दिव्य चरित्र अभी आप सुने हैं क्रमशः। पृथ्वी महाराज एक आदर्श राजा का जीवन प्रस्तुत किए। श्री भगवान की आराधना किसी भी व्यक्ति का कर्तव्य है, और उसमें सबसे बड़ी जिम्मेवारी है, जय श्री राधा रास बिहार, भगवान के भक्ति का दायित्व तो प्रत्येक जीवों पर है, उनमें भी मनुष्य समाज पर, और मनुष्यों में भी नेतृत्व करने वाले लोगों पर ज्यादा जिम्मेवारी है, लीडर ग्रुप पर। तो महाराज पृथ्वी एक आदर्श प्रस्तुत किए, राजा के पद पर होकर भक्ति का आदर्श, पूरा जीवन भगवान की भक्ति में बिताए। भगवान की प्रसन्नता के लिए महाराज पृथ्वी ने अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ किया। इनका लक्ष्य था भगवत प्रीति, विष्णु की प्रसन्नता। लेकिन जब एक दो तीन क्रमशः यज्ञ करते हुए 99 यज्ञ पूरा कर लिए, सवा अश्वमेध यज्ञ जब प्रारंभ किए, तो देवराज इंद्र को बड़ा दुख हुआ, क्योंकि जो व्यक्ति 100 बार अश्वमेध यज्ञ कर लेता है तो वह इंद्र पद के लिए क्वालिफाइड हो जाता है, स्वतः उसे इंद्र पद दिया जाता है। और अश्वमेध का अर्थ है कि एक घोड़ा छोड़ा जाता है चुनौती के लिए, और वह घोड़ा संपूर्ण विश्व के राज दरबार में घूमता है कुछ छोटे सैनिक के साथ, और उसके गले में एक चुनौती पत्र होता है, अमुक राजा का घोड़ा है और इस राजा की अधीनता स्वीकार करो, अन्यथा नहीं स्वीकार करना चाहते हो तो घोड़ा को पकड़ो, राजा से युद्ध करना पड़ेगा। तो जब वह निर्बाध्य रूप से घोड़ा संपूर्ण विश्व के राजधानी से घूमते हुए लौट आता है, तब यज्ञ किया जाता है। और यज्ञ कुंड में उस घोड़े को काट काट कर मंत्रों के द्वारा हवन किया जाता है, और जब संपूर्ण रूप से हवन कुंड में घोड़े के शरीर को डाल दिया जाता है, तब वह पुनः अग्नि कुंड से वैदिक सर्जरी के माध्यम से निकलकर बाहर आ जाता है, तब उस यज्ञ को पूर्ण माना जाता है। तो एक दो बार नहीं, 100 बार जो संपूर्ण पृथ्वी के राजाओं को अपने अधीन कर लेता है उसे इंद्र पद के लिए क्वालिफाइड माना जाता है। तो कोई भी व्यक्ति जब 100 अश्वमेध यज्ञ पूरा कर लेता है तो पहले के इंद्र को हटाकर उसको इंद्र बना दिया जाता है। इसलिए वर्तमान इंद्र को बहुत चिंता होती है कि कोई 100 अश्वमेध न पूरा कर ले। इंद्र का एक नाम है शक्र, शक्र का अर्थ है सब, तलाबी स है, स मतलब सत, सौ, क्र जो है क्रतु, क्रतु मतलब यज्ञ। तो शक्र का अर्थ है शतक क्रतु, 100 यज्ञ करने वाला है। तो सत अक्रतु का क्र संक्षेप में इंद्र साइन करते हैं शक्र, इसलिए उनका नाम शक्र होता है, 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाले। तो वर्तमान इंद्र चिंतित हुए। यद्यपि महाराज पृथ्वी का लक्ष्य स्वर्ग नहीं था, भगवत प्रीति थी। श्रीमद् भागवतम में अनेक ऐसे राजा हुए हैं जो इंद्र पद नहीं चाहे। किसी ने 100 अश्वमेध यज्ञ किया, किसी ने 118 अश्वमेध यज्ञ किया, किसी ने 133 अश्वमेध यज्ञ किया, एक राजा तो 154 अश्वमेध यज्ञ किए। उनको इंद्र पद नहीं चाहिए, केवल भगवत प्रीति। तो 100 अश्वमेध यज्ञ में उस यज्ञ पशु को, घोड़े को चुराने का प्रयास इंद्र किए, लेकिन उन्होंने कवच पहना पाखंड का। तो मैं इसके पहले यह बताना चाहता हूं कि इस वर्तमान 24वें अध्याय में क्या वर्णन है। पृथु महाराज के पुत्र विजितासु और विजितासु के बड़े तेजस्वी पुत्र हुए अग्नि देव ही पुत्र के रूप में आए, पवन, पावमान और सूची, और एक दूसरी पत्नी नभस्वती थी। उससे महाराज विजितासु ने हविर्धान नामक पुत्र प्राप्त किया और हविर्धान के पुत्र हुए बर्हिषद। वही बर्हिषद बहुत यज्ञ किए, उनका नाम हुआ प्राचीन बरही। प्राची पूरब की ओर मुख करके बरही चटाई रख दिए, पूरे पृथ्वी में चारों तरफ कुश कुश हो गया था, तो प्राचीन बरही। और प्राचीन बरही ने समुद्र की कन्या शतद्रुति से विवाह किया था, लक्ष्मी के समान सुंदरी थी। भागवत में वर्णन है कि जब महाराज प्राचीन बरही शतद्रुति से विवाह के लिए फेरे दे रहे थे, तो उनके विवाह में आए हुए देवता लोग चकित हो गए। इतनी सुंदरी थी, साक्षात लक्ष्मी की बहन, समुद्र की पुत्री थी। अग्नि देव एकदम प्रभावित हो गए। तो उसी शतद्रुति से महाराज प्राचीन बरही ने 10 पुत्र प्राप्त किया जो सुप्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रचेतागण है। तो प्रचेतागण महाराज प्राचीन बरही के पुत्र हैं और वे लोग अपने पिता की आज्ञा से सृष्टि विस्तार के लिए तपस्या करने गए और तपस्या काल में उनको भगवान शिव का दर्शन हुआ। भगवान शिव स्वतः स्वयं अपनी कृपा से प्रकट हुए। उनके लिए, शिव जी के लिए लोग तपस्या नहीं किए, भगवान विष्णु के लिए गए थे, लेकिन शिव जी उनके सामने प्रकट हुए उस सरोवर से, नारायण सर से। और प्रकट हो करके प्रचेताओं को उपदेश किए हैं। वही उपदेश भगवान शिव के मुख से निकलने के कारण रुद्र गीत कहा गया, जो इस अध्याय में वर्णन हुआ है। रुद्र गीत भगवान शिव के मुख से भगवान के भक्ति परक स्तुति, रुद्र गीत। और उन प्रचेताओं ने चंद्रमा जी के आज्ञा से, ब्रह्मा जी की आज्ञा से वार्षी से विवाह किया। प्रलोमचा के गर्भ से एक पुत्री हुई थी, कथाएं आएगी। और उस वार्षी के गर्भ से दसों ने एक स्त्री से विवाह किया। एक विचार, एक मानसिकता, एक व्यवहार वाले व्यक्ति थे प्रचेतागण, और दसों ने मिलकर एक पुत्र प्राप्त किया। उस पुत्र का नाम हुआ दक्ष। भागवत में दो दक्ष हैं, एक ब्रह्मा के पुत्र दक्ष और एक प्राचेतस दक्ष। ब्रह्मा के पुत्र दक्ष की पुत्री सती हुई, जिनका विवाह भगवान शिव के साथ हुआ, और बाद में ससुर दामाद के झगड़ा में सती अपना शरीर त्याग कर दी। इससे ससुर दामाद का झगड़ा बड़ा भयंकर बढ़ गया और बाद में दक्ष प्रजापति का सिर बकरे का सिर बना दिया गया। अब बेचारे इस अपमान को नहीं सह पाए, इसलिए उन्होंने उस शरीर को छोड़कर पुनः प्रचेताओं के पुत्र के रूप में जन्म लिए और फिर इनका नाम हुआ प्राचेतस दक्ष, फिर प्रजापतियों का अध्यक्ष बने। तो इस अध्याय में प्रचेताओं की कथा है, प्रचेताओं को भगवान शिव के मुख से उपदेश है रुद्र गीत के रूप में। अब आइए इस श्लोक के ऊपर। यह श्लोक महाराज विजितास्व के गुणों का वर्णन कर रहा है। इसमें सुखदेव गोस्वामी महाराज विजितास्व की विशेषता बतला रहे हैं कि विजितास्व का एक नाम था अंतर्धान। अंतर्धान नाम क्यों पड़ा, तो इसको कहते हैं कि अंतर्धान गतिम सक्रात लब्ध्वा अंतर्धान संगीतः। इन्होंने अंतर्धान गति, अंतर्धान अंतर्हित होने का, छिपने की जो शक्ति प्राप्त की, वह किससे प्राप्त की? सक्रात, शक्र से, इंद्र से। और इसके बाद इनका नाम क्या हो गया? अंतर्धान संगीतः। अंतर्धान गति प्राप्त करने के कारण इनका नाम एक हो गया अंतर्धान, छिपने की शक्ति प्राप्त किए। किससे प्राप्त किए? सक्रात, इंद्र से। तो इंद्र से प्राप्त किए। तो इंद्र क्यों इनको इस प्रकार के शक्ति दिए, तो फिर आपको पीछे के अध्यायों पर विचार करना पड़ेगा। 23वां अध्याय में वर्णन है कि जब सौवा अश्वमेध चल रहा था महाराज पृथ्वी का, तो अपने बड़े पुत्र विजितास्व को उस अश्व के रक्षा के जिम्मेवारी दिए थे महाराज पृथ्वी। बड़ा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी था। पूरे संपूर्ण विश्व में घूमकर वह घोड़ा आया है यज्ञ स्थल पर, और उसको हवन करना है, और बीच में कहीं चोरी चला जाए तब तो यज्ञ पूरा नहीं हो सकता। तो देवराज इंद्र घबराए हुए आए और उस घोड़े को चुराने का प्रयास किए। चुराने के लिए वे इंद्र वेश में ही नहीं चुराए, पाखंड का आश्रय लिए। पाखंड का अर्थ भी किया गया है पहले अध्याय में। पाखंड में दो शब्द है, पा और खंड। पा का अर्थ है पाप और खंड का अर्थ है चिन्ह, वेश। पाखंड वेश का अर्थ है अधर्म में धर्म का भ्रम। करना है अधर्म, पाप, लेकिन देखने वाले को भ्रम होता है कि ये धार्मिक है। तो उस अधर्म करने के लिए जब धर्म के वेश को धारण किया जाता है, धार्मिक वेश, तो उसको पाखंड कहते हैं। भीतर लक्ष्य है पाप करना, लेकिन वेश साधु का है, तो उसको पाखंड कहते हैं। तो इंद्र आए, लेकिन बहुत बड़ा जटाजूट बढ़ाकर, भस्म शरीर में लगाकर, कौपीन लंगोटी पहनकर आ गए जग स्थल में। तो यज्ञ चल ही रहा है, साधु महात्मा घूम ही रहे हैं, किसको शंका है कि घोड़ा चुराने आ गया है। घूम रहे थे और घूमते हुए अवसर मिला, धीरे से घोड़ा को खोल करके जहां पर बंधा हुआ था लेकर चल दिए उसी साधु वेश में। तो कोई बाहर से चोर तो आया नहीं था, सब साधु महात्मा है, कोई ध्यान नहीं दिया गया, विजितास्व ध्यान नहीं दिए। तब तक अत्रि ऋषि देख लिए कि साधु के वेश में घोड़ा लेकर जा रहा है, कौन महात्मा है। तो अत्रि ऋषि समझ गए कि ये इंद्र है। तब कहते, अरे राजकुमार, असावधान हो, तुम्हारा यज्ञ पशु कहाँ है? तो राजा जब देखा, राजकुमार देखा, तो अरे नहीं है, कहाँ गया? करे, अरे देखो, तुम्हारे घोड़ा को इंद्र लेकर जा रहा है। तो जब दौड़े तो देखते हैं साधु, तो कहते हैं, महात्मा जी, आप घोड़े को लेकर कहाँ जा रहे हैं? और वो तेजस्वी राजकुमार इंद्र को पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद भी उसको क्रोध नहीं आया, क्योंकि महात्मा थे, वेश महात्मा का था। कहे कि आप घोड़े को लेकर मत जाइए, यह यज्ञ पशु है, इसी पर सारा यज्ञ आधारित है, छुड़ा लिए। तब फिर पुनः इंद्र दूसरा वेश धारण किए, एकदम नागाओं की तरह नग्न होकर आए, जैसे कुंभ मेला में नागाओं का ऐश्वर्य देखते हैं, वर्णन है नग्न। एक बार जटाजूट में आए, दूसरे बार भस्म आदि लगाकर, तीसरे बार नग्न आए। तो अब नग्न नागा चोरी करेगा ये कौन समझ रहा है, फिर घोड़ा लेकर चले गए। फिर इनको पता चला तो देखे कि नागा जी हैं, तो फिर कुछ नहीं बोले, घोड़ा लेकर चले आए। फिर रक्तांबर, पीला वस्त्र, लाल वस्त्र, गेरुआ वस्त्र भी पहन कर आए। फिर कपालिक, अवघड़ का वेश धारण करके अनेक वेशों में आए। कहने का मतलब कि सभी बार पकड़े गए और सभी बार छोड़े गए। और यह जानकर कि यह इंद्र है, इंद्र ही इस प्रकार का वेश धारण किया हुआ है। तो विजितासु की विशेषता है कि वेश चाहे जो हो, लेकिन व्यक्ति इंद्र है, इस बात को जानकर उन्होंने कोई बुरा कदम नहीं उठाया, गाली तक नहीं दिए। मारने की बात तो दूर है, सम्मान किए विजितासु। तो विजितासु के इस व्यवहार से इंद्र प्रसन्न हो गए। कहे, बेटा विजितासु, तुम्हारे व्यवहारों से मैं बहुत प्रसन्न हूं, और बिना मांगे तुमको मैं एक शक्ति प्रदान करता हूं, जो देवताओं को शक्ति है छिपने का, प्रकट होने का, कहीं भी अंतर्धान होने का। तो यह शक्ति तुमको मैं देता हूं। तो देवराज इंद्र अपनी इच्छा से प्रसन्न होकर विजितासु को अंतर्धान होने की शक्ति दिए। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि अंतर्धान गतिम सक्रात, शक्र के द्वारा अंतर्धान गति प्राप्त किए, इसलिए अंतर्धान संगीत, अंतर्धान संज्ञा इनको प्राप्त हुआ। एक नाम हो गया विजितासु का अंतर्धान। और विजितासु भी नाम एक क्रिया कर्म का ही परिणाम है। ये बार बार घोड़ा को जीत लिए, किससे जीत लिए, साधारण व्यक्ति से नहीं, देवराज इंद्र से छीन लिए। तो अश्व जीतने के कारण इनका नाम हुआ था विजितासु, विजित अश्व, विजितासु। और देवराज से अंतर्धान की शक्ति प्राप्त करने के कारण नाम हुआ अंतर्धान। तो श्रील प्रभुपाद लिखते हैं इस प्रसंग पर कि यद्यपि इंद्र विजितासु के पिता का घोड़ा चुरा कर ले जा रहे थे, किंतु विजितासु को पता था कि इंद्र कोई व्यक्तिगत रूप से चोर नहीं है। ये चोर नहीं है, ये वैष्णव है, भगवान का परम श्रेष्ठ भक्त है। बेचारा अपना पद पोजीशन बचाने के उद्देश्य से ऐसा कर्म कर दिया। कोई बात नहीं, चलेगा, सबको अपने मान प्रतिष्ठा सुख की प्रवृत्ति रहती है, उसमें इंद्र तो एक नंबर का है। तो चलो, ये इंद्र पद को बचाने के लिए जग पिताजी का जग में बाधा डाल रहा है। यह व्यक्तिगत रूप से चोर नहीं है, गलत आदमी नहीं है, भगवान का भक्त है, इसलिए छोड़ दिए। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि यह है विजितासु की सबसे बड़ी विशेषता, कि वैष्णव के प्रति, महान के प्रति सम्मान करने की भावना। महाराज विजितासु सही व्यक्ति का सम्मान करते थे, पहचानते थे। यत किंचित कोई दोष भी दिख गया महापुरुष में, बड़े लोगों में, तो एकदम उसको दोषी मानकर उसको आरोपित करना, दंडित करना या निंदा करना, यह कर्तव्य नहीं है। तो इस व्यवहार के कारण उनका नाम अंतर्धान हुआ और अंतर्धान शक्ति प्राप्त हुई। जान बुझ कर क्षमा किए, प्रभुपाद जी कहते हैं, और इस व्यवहार से इंद्र प्रसन्न हुए। तो इस श्लोक के द्वारा हमें दो शिक्षा प्राप्त होती है। एक कि वैष्णवों में दोष बुद्धि नहीं करनी चाहिए। भगवान तो यहां तक कहते हैं कि अपि चेतसो दुराचारो भजते मान अनन्य भाग साधु रेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो ही सह। लोग चौंक जाते हैं इस श्लोक को सुनकर। यद्यपि भगवान का जो रहस्यमय बात है उसको नहीं समझते हैं, सुनते हैं कि चाहे कितना हो दुराचारी हो, अपि चेतसो दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधु रेव समन्तव्य। अगर कोई दुराचारी व्यक्ति गलती करता हुआ दिखाई देता है, भगवान का भक्त है, उसमें यत किंचित दोष दिखते हैं, फिर भी भगवान कहते हैं कि उसको साधु ही मानना चाहिए। क्यों साधु मानना चाहिए? वो गलती करेगा, दुराचार करेगा और उसे साधु माना जाएगा? तो कहते हैं हाँ। क्यों? सम्यक व्यवस्थित ही स, क्योंकि जो सम्यक रूप से वास्तव में जो जीव के लिए कर्तव्य है उसका पालन कर रहा है, उसकी जो व्यवस्थिति है, स्थिति है, जहां वो टिका हुआ है वह सही है। बाकी इधर उधर कुछ गलती दिखाई देता है तो ध्यान देने योग्य नहीं है। और वह वास्तविक सम्यक व्यवस्थिति क्या है? भजते माम अनन्य भाक, क्योंकि वह अनन्य भाव से मेरा भजन करता है, मेरे अतिरिक्त उसके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, मेरा अनन्य भक्त है। भगवान बड़े ढंग से इस श्लोक को बोल रहे हैं। भगवान के कहने का मतलब है कि वह अनन्य भाव से यदि मेरा भजन करने लगा और उसमें कुछ दोष दिख रहे हैं तो दोष दोष नहीं रह जाएगा। जैसे कह दिया जाए कि अर्ध रात्रि को सूर्य उदय हुए, रात्रि में आकाश में सूर्य दिखा, तो ये कहने का केवल शब्द है। सूर्य आते ही रात्रि नहीं रह सकती। उसी प्रकार जो अनन्य भाव से कृष्ण का भजन करेगा उसमें दोष नहीं रह सकता। संस्कार बस अगर कुछ दोष है वाल्मीकि की तरह तो भी भजन के प्रभाव से दूर हो जाएगा। रत्नाकर रूप में वाल्मीकि एक चोर थे, अपहरण करते थे, लोगों को दुख देते थे, लेकिन जब नारद जी के उपदेश से भजन करने लगे तो उनका वो दोष धीरे धीरे समाप्त हो गया। तो जो साधु पुरुष है संस्कार बस कुछ गलती कर देता है या तत्काल कुछ कामना बस गलती कर देता है तो उसमें दोष दर्शन नहीं करना चाहिए, वैष्णव में दोष बुद्धि नहीं करना चाहिए। यह और दूसरी शिक्षा है कि वैष्णव को सहनशील होना चाहिए। विजितास महाराज पृथु के पुत्र हैं और इस प्रकार उटपटांग व्यवहार पर भी सह लिए, इसे साधुता कहा जाता है। इंद्र द्वारा अश्वहरण फिर भी क्षमा, और वो भी गलत आश्रय लेकर अश्वहरण किए। जब पृथु महाराज को पता चला कि इंद्र घोड़ा चुराने आया और साधु वेश में, तो संकल्प था यज्ञ करने का, क्रोध तो बीच में करना नहीं है, फिर भी महाराज पृथ्वी को क्रोध हो गया। तुरंत अपना धनुष उठा लिए, कहे इसको छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि यह त्रिलोकी का राजा होकर जब अधर्म करने के लिए धर्म का बाना पहन लिया तो इसका नकल आने वाले लोग करेंगे, पाखंड का प्रचार हो जाएगा, और अभी इसका वध कर दूंगा तो लोग डरने लगेंगे, इसलिए धनुष उठा लिए। तो ऋत्विजों ने कहा महाराज आपको क्रोध नहीं करना चाहिए, नहीं नहीं आप यज्ञ करने के लिए बैठे हैं, आप क्रोध मत कीजिए। मैं क्रोध न करूं, इतना अनुचित काम इंद्र करेगा और मैं क्रोध न करूं? तो कहे नहीं, अगर आपकी इच्छा है तो यह काम दूसरा कर देगा, लेकिन आप मत क्रोध कीजिए। तब महाराज पृथु कहे कि आप मंत्रों के द्वारा इंद्र को आहूत करो और अग्नि कुंड में गिरा दो, जला दो इसको, मैं नहीं करता हूं आप करो। तो पृथु महाराज शांत हो गए और ऋत्विज लोग लगे मंत्र पढ़ने। अब इंद्र को उस हवन कुंड में डालने की योजना बना लिए। जब ही मंत्रोच्चारण प्रारंभ किए तो ब्रह्मा जी आ गए, अरे अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं, ये त्रिलोकी का राजा है और इंद्र को हवन कुंड में डालकर जला देना ये ठीक नहीं, ब्राह्मणों को समझाने लगे। सभी जीव अपना कर्म फल भोगता है, तुम लोग इस तरह के काम क्यों कर रहे हैं? और महाराज आपको इंद्र बनना है? नहीं नहीं हमें इंद्र नहीं बनना है। तो फिर इंद्र के प्रति आपको ऐसा क्रोध क्यों हो रहा है? तो बतलाए कि ये पाखंड फैला रहा है। नहीं, पाखंड इससे भी ज्यादा तब फैलेगा जब आप इंद्र को मार डालेंगे, क्योंकि इसके फॉलोअर ऑलरेडी अब हो गए और वे लोग और उत्साह में आ जाएंगे, इसलिए आप ऐसा काम मत कीजिए। ब्रह्मा जी रोक दिए, ब्राह्मणों को रोक दिए, पृथ्वी महाराज को रोक दिए। इसके बाद स्वयं भगवान आए भगवान विष्णु और इंद्र को लेकर आए। तो इंद्र को लेकर आए और पृथु महाराज जब उनके चरणों में प्रणाम करते हैं तो कहते हैं श्री भगवान विष्णु कि हे पृथु, आपको इस प्रकार क्रोध नहीं करना चाहिए, इंद्र को क्षमा कर दीजिए, यह मेरा भक्त है, आप इसे क्षमा कर दीजिए, दोनों वैष्णव हैं, मिलिए, वांछा कल्प कर लीजिए, हो गया थोड़ा सा गलती इससे लोभ बस, लेकिन आपको क्रोध करना ठीक नहीं है। भगवान कहते हैं कि इसलिए ठीक नहीं है कि आप जैसा व्यक्ति जब क्रोध करने लगेंगे तो बहुत दिनों तक महापुरुषों की गई सेवा, ज्ञानी पुरुषों की गई सेवा तो समय वही केवलम हो जाएगा। इतना दिनों तक आप साधुता का व्यवहार किए, भजन किए और फिर साधु पुरुष पर ही क्रोध कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि आपने व्यर्थ में समय गवाया, भजन नहीं किया। श्री भगवान कहते हैं कि साधु का यह लक्षण नहीं है क्रोध करना, साधु का सबसे बड़ा लक्षण है सहनशीलता और अदोष दर्शन। श्री भगवान कहते हैं कि नहीं नहीं, आपको क्रोध करना उचित नहीं, इंद्र को क्षमा कर दीजिए। तो भगवान के कहने पर पृथु महाराज बिल्कुल क्षमा कर दिए और इंद्र से मिले परस्पर। तो इसमें यह महत्वपूर्ण शिक्षा प्राप्त होता है, विजितास भी इसी स्तर का व्यक्ति था, क्षमा कर दिया। इसके कई उदाहरण भागवतम में है। जब दक्ष के द्वारा देवर्षि नारद को श्राप मिला, दक्ष 10,000 पुत्र उत्पन्न करके सृष्टि कार्य के लिए तपस्या करने के लिए भेज दिए, भागवत में कथा है, आप सुने होंगे। तो देवर्षि नारद गए जहां वे तपस्या करते थे, 10 बुझौवल बुझा दिए और कहे कि हे राजकुमारों, इस पर विचार करके तब जो भी करना है करो। तो ये राजकुमार जब विचार किए तो उनको सृष्टि कार्य व्यर्थ लगा, भगवान का भजन करने लगे, 10,000 लड़के सन्यासी बन गए। तो दक्ष को बड़ा क्रोध आया कि नारद उन लोगों के पास पहुंच गया, हमारे मासूम बच्चों को विरक्त बना दिया। इसके बाद फिर 1,000 पुत्र उत्पन्न किए, तो उन 1,000 पुत्रों को भी थोड़े समय में देवर्षि नारद भक्त बना दिए। केवल यह बात कहे कि हे राजकुमारों, अच्छा उसे माना जाता है जो अपने अग्रजों का अनुसरण करता है, कहकर चले गए। तो ये लोग विचार किए कि हमारे अग्रज, हमारे बड़े भाई क्या किए, तो पता चला कि वो विरक्त हो गए, तो ये लोग भी विरक्त हो गए। तब नारद जी पहुंचे दक्ष प्रजापति के पास, सब जगह घूमते हैं, तो उनको देखकर दक्ष एकदम आग बबूला हो गया, तुमको शर्म नहीं आई, हमारे बच्चों को विरक्त बना दिया, तुमको मैं श्राप देता हूं कि कहीं भी अधिक देर तक नहीं टिक पाएगा, ज्यादा टिकने पर गंभीर प्रीचिंग कर देगा, इसलिए श्राप दे दिए। तो देवर्षि नारद दक्ष के श्राप को हंसते हुए स्वीकार कर लिए, चले गए। सुखदेव गोस्वामी कमेंट्री करते हैं, यह है साधुता। केवल दक्ष ही श्राप नहीं दे सकता था, देवर्षि नारद भी चाहे तो श्राप दे सकते थे, लेकिन सामर्थ्य होते हुए भी अपने प्रति किए गए अपकार को जो आसानी से सह लेता है उसको साधु कहते हैं, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं। और एक कथा भागवत में है कि जब चित्रकेतु महाराज भगवान शिव के क्षेत्र कैलाश में गए, घूमते हुए विमान पर चढ़े हुए जब गए, तो देखते हैं कि भगवान शिव अनेक ऋषि मुनियों साधु संतों के बीच प्रवचन कर रहे हैं, लेकिन उनके गोद में पार्वती है, जांघ पर बैठी हुई है और उसको हाथ से पकड़कर कथा कर रहे हैं। तो इसको देखकर चित्रकेतु को सहन नहीं हुआ, देवताओं में सर्वश्रेष्ठ महादेव ये कौन कथा करने की फैशन चालू कर दिए, देखकर चकित हो गए और बोलने लगे, हे महादेव, आपका यह व्यवहार उचित नहीं है। पत्नी को गोद में लेकर जांग पर बैठाकर कृष्ण कथा कहना, ये कहां तक उचित है? बोलने लगे, जो भी बोले, हमारे कहने का मतलब कि पार्वती सहन नहीं कर पाई। कई शिव और ब्रह्मा पर शासन करने वाला तो कहां से आ गया? यहां बैठे हुए ऋषियों को ये दोष नहीं दिखाई देता है? अरे मूर्ख क्षत्रिय, तुमको अपने पद का अहंकार हो गया है, इसलिए तत्काल दैत्य योनि में जाओ, तब तुम्हारा होश ठिकाने में आ जाएगा बेटा, तब समझेगा कि हम कौन हैं। श्राप दे दी। तो चित्रकेतु महाराज उतरे और क्षमा याचना करते हुए कहे, माता जी मेरे कठोर वचनों के लिए मुझे माफ कर दीजिए। जबकि मैंने उचित कहा है, फिर भी आपको बुरा लगा है तो मुझे माफ कर दीजिए, और मैं भगवान शिव के चरणों में अपराध किया, इस कर्म का फल मुझे अवश्य भोगना चाहिए, तो इस कर्म के परिणाम से मैं असुर योनि में जाऊंगा, यह मुझे स्वीकार है। आप सूचना मात्र दिए, इस सूचना के लिए भी आपको धन्यवाद। और चले गए चित्रकेतु महाराज। तब भगवान शिव कहते हैं पार्वती से, देख ली भगवान श्री हरि के भक्तों की महिमा, देख ली आंखों से, केवल तुम ही श्राप नहीं दे सकती हो, चित्रकेतु भी चाहे तो श्राप दे सकता था, लेकिन सामर्थ्य रहते हुए भी अपकारी के प्रति क्रोध न करना, यह है साधुता, यह है वैष्णवता, शिव जी कहते हैं। तो इस प्रकार अनेकों प्रमाण हैं, अम्बरीश महाराज भगवान के महान भक्त हैं, बिना गलती के दुर्वासा जी क्रोधित हो गए और उनको नष्ट करने के लिए कृत्या उत्पन्न कर दिए। महाराज अम्बरीश केवल क्षमा याचना करते रहे, फिर भी उनका अपराध इतना भयंकर हुआ कि भगवान का चक्र उनका पीछा करने लगा। एक कथा आप सुने हैं, एक साल के बाद जब अम्बरीश के पास भगवान की प्रेरणा से दुर्वासा लौट कर आए, तो अम्बरीश महाराज दुखी थे। किस बात के लिए दुखी थे? कि हमारे कारण इस ऋषिवर को इतना कष्ट हुआ। चक्र से प्रार्थना करते हैं, भगवान के तेजस्वी चक्र सुदर्शन माफ कर दीजिए, और मैं अपने जीवन में जो भी साधना किया हूं, भजन किया हूं, भगवान के प्रति कुछ भक्ति किया हूं, तो सब कुछ निछावर है इस महात्मा की रक्षा के लिए। यह है साधुता। एक जान मारने के लिए अपना बम विस्फोट कर दिया, कृत्या उत्पन्न कर दिया, उसके प्रति भी इतनी सहनशीलता और इतनी आग्रह, इसको साधु कहते हैं। तो इस प्रसंग से विजितासु के महान गुण जो प्रकट हुआ है, जिसे देवराज प्रसन्न हो गए और अंतर्धान की शक्ति दिए, अंतर्धान नाम पड़ा, तो उससे हमको शिक्षा प्राप्त होता है कि हमें वैष्णव में दोष दर्शन नहीं करना चाहिए और सदैव सहनशीलता का व्यवहार करना चाहिए, सह लेना चाहिए किसी प्रकार के अपराध को। हरे कृष्ण, जय श्रील प्रभुपाद। प्रश्न पूछिए। बोलिए बोलिए। अच्छा, माइक नहीं है। क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हाँ है, यही प्रश्न था। क्या था, क्या पूछे, बतलाइए। हाँ हाँ,
ये बात सही है कि वैष्णव को क्षमा कर देना चाहिए, वैष्णव का आभूषण है क्षमा करना, लेकिन यदि कोई मैनेजमेंट में हो और यदि वो दंड नहीं दे रहा है तब शास्त्र के अनुसार वो अपराधी हो जाता है, वो दंड का भागी होता है। तो इसको सिंक्रोनाइज आप कैसे करेंगे, कोई वैष्णव है लेकिन वो मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, वो ब्रह्मा विष्णु और वो इंद्र का और वो क्या विजयस्व का और चित्रकेतु का, तो बात सही है, शिक्षा लेनी चाहिए, लेकिन आज प्रैक्टिकली हम उसको कैसे अपने जीवन में उतार सकते हैं कि वैष्णव हैं लेकिन साथ साथ मैनेजमेंट के पोजीशन पर भी हैं, तो कोई गलत करता है तो ये समझ करके हाँ वही वैष्णव है क्षमा कर दो, क्या उचित होगा?
देखिए दो बात है, एक तो वैष्णवता यह है कि किसी में दोष दर्शन न करें, उसके प्रति भीतर से दोष दर्शन न करें, लेकिन जब नेतृत्व पद पर हैं तो एक कर्तव्य भी बनता है कि अपने अधीनस्थ लोगों को शिक्षा देना और उनको समझाना, स्नेह से समझाना चाहिए, स्नेह से बात ज़्यादा समझ में आती है और ऐसे स्नेही व्यवहार से व्यक्ति प्रभावित होते हैं और शिक्षा स्वीकार करते हैं। अगर हम स्नेह न करके सीधे शासन करना चाहें तो मानसिकता ही उसका बदल जाता है, वो सीख क्या पाएगा, नहीं सीख पाता है। लेकिन ऐसे बड़े लोगों के द्वारा, गुरु के द्वारा, पिता के द्वारा, माता के द्वारा, अपने संतान के प्रति या राजा के द्वारा प्रजा के प्रति कुछ दंड विधान करना ये अपराध नहीं है, ये उसका कर्तव्य है। लेकिन वह वैष्णव है या अपराधी है, दोषी है, पापी है, नीच है, यह बुद्धि रखकर नहीं करना चाहिए, कर्तव्य समझकर करना चाहिए। उसको उसमें दोष बुद्धि करके उसको शासन करना दूसरी बात है और उसको अपने अधीनस्थ मानकर उसका सुधार करना दूसरी बात है। सुधार की भावना से अगर दंड देते भी हैं तो रियलाइज कर सकता है कि हमारे हित के लिए किए, लेकिन मात्र केवल शासन करने के लिए व्यवहार किया जाए तो ठीक नहीं है। अपने अंदर दैन्य होना चाहिए और आत्मीयता होनी चाहिए। तो आत्मीयता से जब व्यवहार किया जाए तो आत्मीयता से तमाचा भी लगाना अच्छा है, और जब वैष्णव के प्रति अब शब्द बोल देना भी अपराध है, वैष्णव अपराध है, लेकिन स्नेह से उसको तमाचा भी लगाया जा सकता है यदि गलती कर रहा है। और देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो गलती किया है उसी से उसके गलती को बताना अपराध नहीं है। जब हम उससे हटकर भिन्न दूसरों से उसके गलती को कहना प्रारंभ कर देते हैं तब ये वैष्णव अपराध हो जाता है, इससे तो उसका सुधार नहीं होता और उत्तेजित हो जाता है। हमारे विषय में दूसरों से कह रहे हैं चिढ़ जाता है, सुधर नहीं पाता, तो अपने व्यवहारों से उसे उत्तेजित नहीं करना चाहिए। मैनेजमेंट के अधिकारियों को कोशिश करना चाहिए कि उसी को समझावे और जैसे भी समझे, प्रेम से, स्नेह से या शासन से उसे समझाने का कोशिश करना चाहिए, और यह अपराध नहीं है।
लेकिन आप कह रहे हैं कि दोष बुद्धि नहीं करना, जब तक से समझेगा व्यक्ति नहीं कि इसमें दोष है, या डॉक्टर समझे ना कि इसमें रोग है, दवा क्या देगा? समझना जरूरी है कि दोष है, गलती किया है, जज है, जज सब कुछ सुनता है, भले जज द्वेष नहीं करता है जिस व्यक्ति से, चाहे किसी को पुरस्कृत करे चाहे दंड दे, उसे वो अनासक्त है, निर्ममो निरहंकार है, उसमें नहीं है, लेकिन वो दोष को समझता है तभी दंड देता है, समझेगा नहीं तो किसमें दंड देगा?
हाँ, दोष समझना है लेकिन सुधार के लिए समझना, एक दोष करके उसके प्रति घृणा बुद्धि दूसरी चीज है, यह त्याज व्यक्ति है या ठीक नहीं है, इसको यहाँ नहीं रखना चाहिए, हटा देना चाहिए, यह दूसरी बात है। मैं व्यक्ति का नाम तो नहीं रखना चाहता, लेकिन एक बार पदयात्रा में बहुत साल पहले 85-86 में एक व्यक्ति बार बार गलती करता रहा, तो श्रीपाद लोकनाथ महाराज के पास एक केस गया, मैं भी वहां था, तो मैनेजमेंट वाले भद्रदास और राधारमण महाराज एकदम रिजिड थे कि इसको हटाना है। तो महाराज कहे यह तो अपनी सुविधा के लिए ना, तो कहे हाँ अपनी सुविधा के लिए, और इसके प्रति आप लोगों को कोई स्नेह दया है? ये हमारे समाज से निकल कर किस अवस्था में जाएगा, इस पर भी कुछ ध्यान देते हैं? तो कहे लेकिन इसके कारण और लोग बिगड़ रहे हैं, इस पर आप ध्यान देते हैं? भद्रदास कहे इसके कारण और लोगों में गलती आ रही है, इस पर आपका केयर है? तो थोड़े देर तक चुप रहे महाराज। तो कहे हाँ ये विषम परिस्थिति है, लेकिन इसको निकालना ज्यादा गड़बड़ होगा, क्योंकि यह अब नहीं सुधर पाएगा। कोशिश कीजिए एक बार और। तो नहीं, एक बार की बात नहीं, 5-6 बार माफ कर दिया गया। और मैं अचानक वहां पहुंच गया था, सुन रहा था। तो फिर कहे कि ठीक है, उसको बुलाया जाए और उसी से बात किया जाए हमारे सामने। तो फिर बुलाकर जब बात करने लगे तो कहे आपको माफ नहीं किया जा रहा है, हमारा स्नेह आपको एक बार और रखने का प्रयास कर रहा है। तो अब इस तरह की गलती करेंगे तो कोई नहीं छोड़ेगा। और बाद में मैं जब राधारमण महाराज से पूछा तो कहे कि पता नहीं क्या असर हुआ, वो सुधर गया। तो मैं पूछा कि वो निकल गया कि है? तो कहे सुधर गया पूरा पूरा। तो जो भद्र जी का आक्रोश था वो एकदम शासक के तरह से था, लेकिन महाराज की जो बात उस संदर्भ में हुई वो बड़ा स्नेह से हुई, और वही स्नेह उसका सुधार कर दिया। तो यह दंडित करना, दोष दर्शन करना तो पड़ेगा ही, जैसे डॉक्टर का आप उदाहरण दिए कि रोग नहीं समझेगा, वास्तव में समझना पड़ेगा, समझकर तब इलाज किया जाएगा। लेकिन यह घृणित है, त्याज है, इस बुद्धि से नहीं, यह रोगी है, इसका सुधार करना चाहिए इस बुद्धि से। किसी भी अवस्था में कोई भी व्यक्ति दोषी नहीं है। देखिए समय तो ज्यादा हो रहा है, असीम जी पहले ही कहे कि 9-10 पर समाप्त करना है। तो और भी अनेक उदाहरण है, आप क्या पूछ रहे थे? इनका प्रश्न है कि इंद्र तो बार बार गलती करते रहते हैं और विजितास तो चलो माफ कर दिया, लेकिन और इनको अपने गलती के कारण श्राप भी मिला है, अहिल्या के समय इनको श्राप मिला। तो इंद्र गलती करते हैं तो गलती का परिणाम है कि इंद्र के प्रति लोगों का बहुत सम्मान बुद्धि नहीं है, सबके मन में आ जाता है वैष्णव है, भगवान की आज्ञा से सेवा कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन बहुत लोभी है, यह मन में आ ही जाता है और भगवान पक्ष ले लेते हैं। लेकिन भगवान का कोई व्यवहार में दोष दर्शन नहीं किया जा सकता, आखिर क्यों भगवान पक्ष ले रहे हैं? छठवें स्कंद में पोषण तत्व का वर्णन है, तो उसमें हमारे आचार्य लोग कहते हैं कि इसमें कई तरह के पोषण हुआ है। सामान्य जीवों के प्रति भगवान की जो पोषण प्रवृत्ति है, नीच से नीच स्तर के व्यक्ति के प्रति पोषण प्रवृत्ति है, और देवराज इंद्र के प्रति भी पोषण है। तो उसमें वृत्रासुर का पोषण भगवान किए, इंद्र का पोषण किए, अजामिल का पोषण किए, अजामिल जैसा व्यक्ति किस स्तर का भगवान का नाम उच्चारण किया उसका पोषण हुआ। तो कहने का मतलब भगवान अगर कोई स्नेह व्यवहार करते हैं किसी के प्रति तो उस पर दोषारोपण नहीं किया जा सकता, भगवान का भक्त है, भगवान का भजन करते हैं। इंद्र की एक विशेषता आप समुद्र मंथन के समय देखेंगे, सुखदेव गोस्वामी बिना प्रश्न के कमेंट्री देते हैं कि एक ही समय में, एक ही मुहूर्त में, एक ही लक्ष्य से, एक ही कार्य करने वाले असुर और देवता समुद्र मंथन किए, लेकिन फल में इतना अंतर क्यों हो गया? एक को अमृत पिलाया गया और एक को मार दिया गया, ऐसा भगवान क्यों किए? तो उसका उत्तर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि एक भगवान के प्रति समर्पित थे और एक नहीं थे, ये एक काम में अंतर था। ये सब बात बार भगवान का स्मरण कर लेते थे देवता लोग, जब भी विषम परिस्थिति आती तो भगवान का स्मरण करते, और दैत्य लोग नहीं करते, भगवान के हाथ से अमृत छीन कर लेकर भाग चले। तो इस परिणाम से उनको दुख मिला और देवताओं को अमृत। तो भगवान के भक्ति की विशेषता है, देवराज इंद्र की विशेषता है कि वो समर्पित हैं, भगवान का स्मरण कर लेते हैं, अनन्य भाग हैं, इसलिए साधु रेव सम्मंतव्य। तो इंद्र को साधु मानना ही चाहिए, उसमें दोष दर्शन नहीं करना चाहिए। और कहीं उनको मिल गया गौतम आदि के द्वारा श्राप, तो जानते हैं कितना भयंकर श्राप मिला, लेकिन अपनी वैष्णवता के कारण वह किस रूप में परिवर्तित हो गया, इसको भी आप सुने होंगे पढ़े होंगे। हाँ, बहुत बहुत ऐसे उदाहरण है। इंद्र उसी छठवें स्कंद में वर्णन है कि इंद्र एक से एक भयंकर अपराध करते रहे, अपने गुरु महाराज का अपमान किए, बृहस्पति जी का प्रणाम नहीं किए हुए चले गए, विश्व रूप को गुरु बनाए ब्रह्मा जी के कहने के बाद। और उसी समय ब्रह्मा जी कह दिए थे इंद्र विश्व रूप की एक माइनस प्वाइंट है, ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इसकी माँ असुर कुल की है, तो देवताओं का पुरोहित तो बनेगा लेकिन असुरों के प्रति भी ननिहाल से भी इसकी ममता होगी, इसको सहना पड़ेगा। तो कहे हाँ सह लेंगे, लेकिन जब वो यज्ञ में असुरों के लिए भी कुछ हवन कर देते थे, इसको इंद्र नहीं सह पाए, यज्ञ करते समय उनका सिर काट दिए, गुरु बनाए और सिर भी काट लिए, फिर भी भगवान क्षमा कर दिए, लेकिन उस पाप का फल उनको ब्रह्महत्या के रूप में भोगना पड़ा। और जो आज तक आप जैसे हम जैसे व्यक्ति दोषारोपण कर रहे हैं तो कर ही रहे हैं, तो जो गलती करता है उसका फल तो समाज देता रहता है, लेकिन उसमें दोष दर्शन नहीं करना चाहिए वैष्णवों के प्रति। लेकिन प्रभु जी जो प्रश्न किए वो भी बड़ा गंभीर प्रश्न है कि आखिर अधिकारी को क्या करना चाहिए। तो अपने अधीनस्थ को जैसे भी हो समझा बुझा कर सेवा में लगाना चाहिए, यह दोष दर्शन नहीं है। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा। उस शास्त्र के अनुसार जैसे कुछ आदमी गलती किया, पहले क्या करना चाहिए? क्षमा करना चाहिए, क्षमा।
हाँ, क्षमा।
बाद में नो क्षमा नहीं, सम
सम
सम,
हाँ, सम।
बाद में सम के बाद नहीं, चार चीज है, क्षमा,
दम,
दान देना, कुछ दान देना है तुम थोड़ा, दान के बाद क्या करना, भेद देना करना, और भेद के बाद क्या करना, दंगा देना। क्यों क्षत्रिय का कर्तव्य क्या है कि क्या बोलते हैं, तो प्रोटेक्ट द सिटीज, प्रोटेक्ट भक्तों के लिए या प्रजा के लिए रक्षा देना चाहिए, इसलिए एक क्षत्रिय का कर्तव्य है। इसलिए चार चीज करना, पहले क्या करना चाहिए, पसिफिकेशन, कुछ अच्छा शब्द बोलना, मतलब सामा
सम।
दूसरा क्या है, कुछ दान देना,
साम दाम
दान के बाद क्या करना चाहिए, भेद, कुछ ए तुम ऐसा करेंगे हम आपके लिए कुछ, लेकिन कुछ नहीं करना, लेकिन बाद में क्या करना चाहिए, धंधा करना चाहिए। एक हरे कृष्ण।
प्रभु जी बहुत सुंदर बतलाए, आप लोग समझ ही गए, साम दाम भेद दंड।
मैं ये कहना चाहता हूँ जैसे देवकीनंदन प्रभु के मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए, तो ब्रह्मा और इंद्र इत्यादि तो मैनेजमेंट में ही हैं। मैनेजमेंट में रहते हुए तो निर्णय दिए।
हाँ। लेकिन एक बात है, आप तो अपने पक्ष से सोच रहे हैं, हम लोगों के पक्ष से भी सोचना है कि मैनेजमेंट में रहने वालों से कुछ शासन संबंधी गलतियां हो भी जाती है तो उनमें दोष दर्शन नहीं करना चाहिए जैसे देवराज इंद्र के प्रति तो हम लोगों को अपने अधिकारियों के प्रति दोष दर्शन नहीं करना चाहिए, यह भी शिक्षा प्राप्त हुआ। हरे कृष्ण, जय श्री प्रभुपाद।
हरे कृष्णा।